ओम शांति। व्यक्ति की पहचान अनेक प्रकार से हो सकती है, उसके रूप से, उसके पोजीशन से, उसकी कास्ट से, उसके परिवार से और उसके कर्मों से। कर्मानुसार हम कहेंगे ये पापात्मा है, ये पुण्यात्मा है, ये अच्छी आत्मा है, ये बुरी आत्मा है। अब हमारे पिछले जन्म के कारण हमारा जन्म जिस कुल में हुआ है पिछले कर्म में हम लोगों ने धनदान किया है तो धनवान के घर में जन्म होता है, हॉस्पिटल वगैरह में दान दिया है तंदुरुस्त शरीर मिलता है, धर्मशाला आदि बनाई है अच्छा मकान मिलता है। तो हम पिछले कर्मों का खाता तो ले ही आते हैं, संस्कार भी हम साथ में ले आते हैं और उस संस्कार के अनुसार फिर हमारी दृष्टि वृत्ति कर्तव्य रहता है। फिर इस जन्म में भी माँ बाप के संग से, अपने मित्र संबंधी के संग से, अपने टीचर के संग से हम जो पढ़ते हैं उसके संग से हम अपने संस्कारों को बदलते रहते हैं। यदि संग बुरा तो उसका रंग ऐसा लगता है जो हम बुरे कर्म करते हैं। नेचुरली ये बुरे कर्म का फल आगे पीछे मिलता है, कभी कभी उसी समय मिल सकता है। हमने किसी को मारा, उसने हमको दो थप्पड़ मारे, फिर हम मारते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। अब बाबा कहते हैं कि इस जन्म में पुराने कर्मों का हिसाब किताब योग के द्वारा खत्म करो। नया हिसाब किताब नहीं बनाओ, क्योंकि यहां हम कर्म बंधन में हैं। जो भी हमारे संबंधी हैं कर्म बंधन ही है, उनसे कुछ लेना होता है, कुछ देना होता है। यदि पिछले जन्म में उनको दिया है तो लेते हैं, कुछ लिया है तो देते हैं। तो कहते हैं जैसा बीज बोएंगे ऐसा फल पाएंगे। यदि अच्छे कर्मों का बीज बोएंगे सुख पाएंगे, दुआएं पाएंगे। यदि पाप कर्म का बीज बोएंगे तो दुख पाएंगे, श्राप पाएंगे। बाबा तो हमें वर्षा देने आया है, बाबा तो चाहता है कि ज्ञान योग से हम श्रेष्ठ कर्म करते रहे। आज भी बताया, सत्युग में धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, और अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। तो इसलिए हमें अभी अपने संकल्प बोल कर्म दृष्टि वृत्ति पर बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हमारी दृष्टि वृत्ति कर्म विकारी ना हो, देह अभिमानी ना हो हम, क्योंकि देह अभिमान है, जरूर कुछ न कुछ विकार के वश हो जाएंगे। और अहंकार है, किसी का इंसल्ट करेंगे वो हमारा इंसल्ट करेगा, तो इसलिए बाबा कहते हैं नम्रता धारण करो। दुनिया में क्या पोजीशन है, हेल्थ है, वेल्थ है, पोजीशन है, परिवार समृद्ध है, नशा ना हो, यही कहो ये परमात्मा की देन है। जब ये समझेंगे परमात्मा की देन है तो नम्रता रहेंगे, और जिसमें नम्रता है सबके सामने झुकता है, किसी का अपमान नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता, लोभ ना हो, क्योंकि लोभ के वश चाहिए चाहिए होता रहता है। और हम क्या करते हैं, चोरी ठगी झूठ पाप से धन इकट्ठा करते हैं ताकि हम अपनी मनपसंद चीज खरीद सके। तो जितना हम सत्युग के ज्ञान से बाबा हमें जो भविष्य में देता है वो बुद्धि में रखेंगे तो लोभ के वश नहीं होंगे, और झूठ पाप चोरी नहीं करेंगे। यहाँ की चीजें सत्युग की चीजों की भेंट में कुछ नहीं, इसलिए वैराग्य वृत्ति चाहिए, पुरानी दुनिया से वैराग्य वृत्ति चाहिए, तब संतुष्टता आएंगी। कल भी संतुष्टता के बारे में मुरली सुनी कि हमें सब से संतुष्ट रहना है, अपने से, औरों से, प्राप्तियों से, तो लोभ नहीं रहेगा। फिर देखना है काम विकार का सूक्ष्म रूप ही न हो, किसी इच्छा न हो, किसी से आकर्षित न हो, किसी से प्रभावित न हो, किसी के नाम रूप में फंसना नहीं। नहीं तो नेचुरली है हम दुष्कर्म करेंगे और सजाओं के भागी बनेंगे। बाबा कहते हैं पाप कर्म नष्ट नहीं हुए हैं तो सजा भी खाएंगे और पद भी नीचा बनेंगे। फिर है मुंह, मुंह के वश दुखी होते हैं, किसी को स्पेशल सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं। चार बच्चों में से भी एक बच्चे में मोह होगा तो उसके लिए कुछ स्पेशल करेंगे तो तीन बच्चों को ईर्ष्या आएंगे, दुख होगा। और जिसमें मोह है वो बीमार होगा तो माँ बाप बहुत दुखी होंगे। बीमार आदमी अनकॉन्शियस हो जाएगा पर माँ बाप तड़पते रहेंगे, सोचते रहेंगे किसके पास ले जाऊं, किसकी दवाई करूं, क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं। विदेश में बच्चों को पढ़ाई में भेजने का माँ बाप को शौक रहता है, भेजते हैं परंतु रोते रोते भेजते हैं। एक पिता कहते थे मेरा बच्चा अमेरिका गया, उस बच्चे को जलेबी बहुत अच्छी लगती थी, अब उसको अमेरिका में कौन जलेबी खिलाएगा, तो मैं भी जलेबी नहीं खाती। तो ऐसे दुखी होते हैं और क्रोध कम नहीं है, बहुत कम ब्राह्मण होंगे जिन्होंने क्रोध को जीता होगा। बच्चे पर क्रोध आएगा, चंचल बच्चे हैं, मानते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, खेलते रहते हैं, टाइम पर सोते नहीं, टाइम पर उठते नहीं, माँ बाप को गुस्सा आता है और गुस्से में मार देते हैं। तो नेचुरली है ये भी पाप बनता है। भल माँ बाप की चाहना है कि बच्चे अच्छे बने, पढ़े लिखे, अच्छी पोस्ट पाए, पर बच्चे पढ़ते नहीं तो गुस्सा आ जाता है। तो कल्याण के लिए भी गुस्सा करते हैं तो भी पाप हो जाता है। चाहे मन से, वचन से, कर्म से गुस्सा किया, पाप हुआ। कर्म से सबसे ज्यादा होता है, बोल से बीच का पाप, और मनसा से भी। यदि गुस्सा आया, कुछ बोला भी नहीं पर आंखें लाल हो गई, चेहरा बदल गया, पाप हो गया। इसलिए दूसरे के भले के लिए अपना पाप क्यों करें? ईर्ष्या। जब भाई भाई की दृष्टि हो जाती है तो किसी की ज्यादा प्रशंसा होती है, किसी को ज्यादा सेवा मिलती है, तो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूहानी दृष्टि है, रूहानी भाई भाई है। चलो उसकी प्रशंसा हुई, अप्रिशिएट करो, जिसमें जो स्पेशलिटी है वो अप्रिशिएट करो, ईर्ष्या नहीं करो। तो जितनी रूहानी दृष्टि वृत्ति होंगी, न ईर्ष्या होगा, न वैर होगा, न क्रोध होगा, पाप से बच जाएंगे। इसलिए बाबा रोज 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 हमें देही अभिमानी बनने के लिए शिक्षा देते हैं। तो हमारी सबसे पहला लक्ष्य यही हो, हम देही अभिमानी हो कर करिए, क्योंकि कर्म तो करना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, संसार में भी रहना है। तो कर्म करो, मिलो जिलो, व्यवहार करो, परंतु सोच समझ कर करना है, क्योंकि हमें नॉलेज है अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है। किसी को भी दुख दिया, मनसा वाचा कर्मणा, पाप कर्म। किसी को भी सुख दिया, मनसा वाचा कर्मणा, पुण्य कर्म हो गया। सत्युग में अकर्म होते हैं, क्यों? कि वहां न पाप होता है, न पुण्य होता है, न कोई दुखी होता है जिसको हम दान पुण्य करें, न कोई विकार है जो हम किसी को दुख देवे। तो इसलिए वहां के हमारे अकर्म है, तो इसलिए ये नहीं सोचना कि हम जो करते हैं पता नहीं कोई जानता नहीं। नहीं, धर्मराज के पास सब का हिसाब किताब होता है, इसलिए हमें पूरा ध्यान देना है। क्योंकि कोई का भी कर्म छिपता नहीं, कितना भी छिपाने की कोशिश करो, दुनियावी गवर्नमेंट से छिप सकता है, परंतु भगवान से नहीं छिप सकता। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि हम दुनियावी जेल से छूट जाएंगे पाप कर्म करके, परंतु गर्भ जेल में नहीं छूटेंगे। गर्भ जेल में धर्मराज की पुरी में सजा खादी पड़ती है। तो ये है लास्ट जन्म हमारा, कलयुग का लास्ट जन्म, मेजोरिटी का। इसलिए अभी सब हिसाब किताब चुप्त करता है और नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। ओम शांति। तो अब ये याद रखना है, लौकिक को अलौकिक बनाना है और सभी के प्रति भाई भाई की दृष्टि रखनी है। ये संगम युग का समय बहुत वैल्यूएबल है। अभी सत्कर्मों के बीज बोने का समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी समय है पिछले कर्मों का, विकर्मों का विनाश करने का। तो ज्वालामुखी तपस्या से पिछले विकर्म विनाश करने हैं और हमारा एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म बहुत वैल्यूएबल है। वो हमें फालतू नहीं गंवाना है, व्यर्थ कुछ नहीं गंवाना है। और मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर अपने स्थूल सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में रखना है। कभी बहाना नहीं करना है कि मैं तो नहीं चाहती थी पर हो गया, इसने ऐसे किया इसलिए हो गया। नहीं, ये कमजोरों का शब्द है। जो सर्वशक्तिवान है वो चाहते हैं वही करते हैं। तो इसलिए भाग्यशाली है जो भगवान ने हमें अपनाया है, ज्ञान दिया है और पूरा पुरुषार्थ कराते हैं। करना हमें है पर डायरेक्शन बाबा देते हैं, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या करना है, क्या नहीं करना। हमें सिर्फ फॉलो करना है। जितना फॉलो करेंगे उतना हमें फायदा है। मन मत तो आधा कल्प चलाए, मन मत, पर मत, रावण मत, अभी श्रीमत पर चलने का समय है, इसलिए हमें श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करके अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना ही है, ये अपना निश्चय होना चाहिए। और जितना निश्चय पर अड़े रहेंगे पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। तो जो आज का हमारा टॉपिक था कि हमारे कर्म किस प्रकार के होने चाहिए, तो हमारे चेहरे से झलकने चाहिए, तो उसका दीदी जी प्रैक्टिकल स्वरूप हमारे सामने है। जो आप इतनी सेवाओं को संभालते, चाहे वो ब्रह्म कुमारी संस्थान के जॉइंट चीफ, ज्ञान सौर के डायरेक्टर, एशिया पैसिफिक रीजन की सेवाओं को संभालना और पीस पार्क ग्लोबल की सेवाओं में अपना सहयोग देना, इतना सब कुछ करते हुए भी एकदम बिल्कुल आप लाइट रहते हैं, तो दीदी जी एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ ही आया है कि आप इतनी सेवाओं को संभालते हुए भी इतना लाइट कैसे रहते हैं?
ओम शांति। हमारी सेवाएं प्रकाशमणि दादी की सेवा की भेंट में कुछ नहीं। दादी हमारी मेंटर रही, वो हमेशा लाइट रहती थी और हमेशा कहती थी कराने वाला बाबा है, हम तो निमित्त है। तो यही पाठ हमने उनसे पढ़ा, कराने वाला वो है, हम अपनी रीत से कराते हैं, जो करेगा अपना भाग्य बनेगा, जो नहीं करेगा उसका अपना दुर्भाग्य बनेगा। इसलिए उनकी हम चिंता नहीं करते, टेंशन में नहीं आते।
दीदी जैसे अभी आपने बताया था कि हमारा योग ज्वालामुखी योग हो, तो इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि योग के समय हम क्या सोचे, तो योग के समय क्या सोचे और हमारा योग ज्वालामुखी कैसे हो?
योग में हमें यही सोचना है कि हमें सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति जमा करनी है, कभी कभी अंतर्मुख होकर देखना है कि हमारे में क्या विशेष गुण धारण करने हैं, क्या विशेष कमी है जो भरनी है। तो अंतर्मुखी होके अपने आप को चेक भी करना है, शक्ति भर के कमियां है भरनी है, जो कमियां हैं दूर निकालनी है। एक माता क्या करती थी, लिस्ट बनाती थी गुणों का अवगुणों का और अपना चेक करती थी और रोज रात को अपना चार्ट देखती थी, आज हमने क्या भरा है क्या भूल की है, और फिर दूसरे दिन अमृत वेला से निश्चय करती थी कि ये गुण हमको भरना है, ये भूल हमें नहीं करनी है। तो इसी रीत से अपने को बाप समान बनाने का लक्ष्य रखा कर मास्टर सर्वशक्तिवान बन सब कुछ जमा करना है।
दीदी जी एक प्रश्न है, बाबा कहते हैं ड्रामा रिपीट हो रहा है, बाबा कहते हैं ड्रामा रिपीट हो रहा है, तो क्या हमारे संस्कार भी कल पहले वाले रिपीट हो रहे हैं?
जरूर रिपीट तो होंगे ही, परंतु ये देखना है कि हम पुराने संस्कारों को रिपीट होने ना दे, इतना टेंशन हो और इतनी दृढ़ता हो, इतनी शक्ति हो जो पुराने संस्कारों को रिपीट न होने दे।
दीदी जी एक प्रश्न है कि जब आप विदेश सेवाओं की शुरुआत में विदेश में गए तो वहाँ कल्चर भी भिन्न थी, भाषा भिन्न थी, संस्कार लोगों के सब कुछ भिन्न थे, तो वहाँ पर इस भिन्न संस्कार संस्कृति में आपको सेवा करते हुए उन लोगों के बीच में, तो बाबा की मदद का कोई ऐसा विशेष अनुभव जो आज तक आपको याद रहता है उसको सुनाइए।
बाबा की मदद तो कदम कदम पर रही, क्योंकि ब्राह्मण भी थे जो मदद करते थे, क्योंकि शुरू शुरू में गई बल हम ने अंग्रेजी में स्टडी किया था अपना मेडिकल, पर बोलने की आदत नहीं, और वहाँ की भाषा हर एक देश की भाषा उसके उच्चार अपने अपने, तो क्या होता था कि पहले तो नए नए स्थानों पर जाने के लिए वहाँ के भाई बहनों की मदद लेनी पड़ती थी, फिर मैं भाषण तो कर लेती थी पर अंत में प्रश्न उत्तर जरूर होता था। तो हमारे साथ जो भाई बहन थे मैं उनको कहा, वो जो प्रश्न पूछते हैं रिपीट अपने, क्योंकि इंडियन भाई बहन थे, अपने उच्चार से रिपीट करो, तो मैं समझ भी सकूं, ने प्रश्न नहीं समझा तो उत्तर कैसे देंगे, तो उन्हों की भी मदद थी। और बाबा की विशेष मदद थी कि भारत में हम बचपन में कहाँ भी अकेले नहीं जाते थे, हमारी मेडिकल इंटरव्यू थी उस समय भी मेरे साथ मेरा कजिन भाई आया था, विदेश में तो अकेला अकेला रहना होता था, अपने को ही शॉपिंग करनी, अपने को ही खाना पकाना, सफाई करनी, सब कुछ, तो बाबा की मदद रही, कभी भारी नहीं लगा। और अकेले अकेले हमने कई देशों में मुसाफरी की, अफ्रीका में गई, एक भाई ने लंदन के एक व्यक्ति का एड्रेस दिया, वहाँ उसके घरों में रहकर खाना पकाना, वो भाई अपने न्यूज़पेपर मीडिया में ले जाते थे, सत्संगों में ले जाते थे और दूसरे शहर के बस स्टॉप तक छोड़ जाते थे। फिर वहां से दूसरा भाई आता था सामने और वहां भी उसी रीत से कई शहरों में हमने चक्कर लगाया। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई सेंटर नहीं, पर संपर्क वालों ने सहयोग दिया और सेवा हो गई। सबसे बुरा अनुभव वहां हुआ, मैं न्यूजीलैंड गई, कईयों के साथ संपर्क किया था। एक अंग्रेज संस्था, वैसे तो संस्था इंडियन थी, लेकिन चलाने वाला अंग्रेज था वहां का, न्यूजीलैंड का। उसने कहा आप एयरपोर्ट से बस लेकर सिटी टर्मिनस पर आ जाना। तो मैं 1 बजे एयरपोर्ट पर पहुंची, 2 बजे सिटी टर्मिनस पर पहुंची, तो कोई लेने नहीं आया। मैं एड्रेस देखा, तो एड्रेस लेके मैंने टैक्सी करके गई वहां, तो वहां ऑफिस थी उनकी, और रात को तो ऑफिस बंद होती थी, और बहुत बड़ा गेट बंद था। तो बेचारा टैक्सी ड्राइवर अच्छा था, कहा चलो टेलीफोन बूथ पर। उसने अपना कॉइन डालकर फोन किया, तो उसने कहा हमारा ड्राइवर तो आ रहा था, कार बिगड़ गई, आप अभी, हमारा ये हैंडरसन आश्रम है वहां पहुंच जाओ। तो ड्राइवर ले गया और पहुंचे तो अंधेरा, वहां आग लगी थी जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं हुआ था, और रात को हमको एक अंग्रेज माता के साथ रखा, जिस माता को मरवाना फूंकने की आदत थी। अभी वैसे भी वो लोग हैं दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं करते, और उसमें भी देखा कि ये साध्वी है और मैं अपना मरवाना कैसे भूंगेंगे कमरे में, तो उसको पसंद तो नहीं आया, पर मेरी भी तो लाचारी थी। तो मैं 1-2 दिन तो रही साथ में, फिर संडे को भाषण हुआ हिंदू सभा में, तो वो कहे आप लोग कहाँ रहे हैं, मैंने कहा हैंडरसन आश्रम में, तो कहा कि नहीं वो तो बहुत दूर है शहर से, हमारे किसी के पास रहो तो हम आपका रोज का प्रोग्राम बनाएंगे। फिर उन्होंने ले गए, तो वहाँ के शहर में सारे ऑकलैंड में 2 वेजिटेरियन फैमिली। तो एक रात तो मैं वहां के प्रेसिडेंट के पास रही जो नॉन वेजिटेरियन। मैंने कहा मुझे तो वेजिटेरियन घर में रहना होगा, अपने हाथ से खाना खाना होगा। फिर उन्होंने दूसरे दिन प्रबंध कर दिया। पीछे तो चलता रहा, मतलब मैं 4 मास रही, परंतु एक ही परिवार ज्ञान में आया और उसके घर में फिर गीता पाठशाला शुरू कर दी। तो इस रीत से परीक्षाएं बहुत आई, पर बाबा की मदद से पार हो गए।
दीदी जी, एक प्रश्न है कि जब आप मेडिकल पढ़ाई कर रहे थे तो मेडिकल पढ़ाई वालों को ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी का उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आपको इस संस्था के ज्ञान की ऐसी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी जो आपको बाबा के पास तक लेके आई? मेडिकल पढ़ाई करते हुए आपको बाबा ज्ञान की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी जो आपको बाबा के ज्ञान में लेके आई?
बचपन से मेरा विचार था कि मुझे मेडिकल प्रैक्टिस करके समाज सेवा करनी है, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिस करके शादी नहीं करनी है, यदि पढ़ना है शादी नहीं, क्योंकि मेडिकल स्टडी भारी होती है और शादी किया माना बच्चे, घर, व्यवहार। तो हमारे लौकिक पिताजी की भी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, उन्होंने कहा ठीक है शादी मत करो। तो यहाँ के ये देखा पवित्रता, क्योंकि हमारी फ्रेंड्स पूछती थी तुम शादी नहीं करेंगी बुढ़ापे में कौन संभालेगा, तो मेरे पास जवाब नहीं था। तो यहाँ करे तो दोनों सहज हो गया, बाबा का सहारा मिल गया और सेवा का भी चांस मिल गया। तो इसलिए हमने ये ज्ञान अपना लिया।
दीदी जी, इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, जैसे आपने बॉम्बे में अपने लौकिक पिताजी को संस्था में सेंटर देने के लिए राजी किया था, तो उनको आपने क्या समझाया, कैसे समझाया, कैसे राजी किया जो उन्होंने संस्था में पहला सेंटर समर्पित किया?
हमारे लौकिक पिता बिजनेसमैन थे और वो जो कमाता था, यदि हम लोगों को शेयर पार्टनर नहीं बनाया तो उसका सब कुछ गवर्नमेंट को टैक्स में देना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, सब बच्चे, बहू, पोते सबको शेयर होल्डर बना दिया। तो हम सब के नाम पर पैसा अलग अलग था। हमारी 2 बहनों को शादी में फ्लैट दिया। मैंने कहा मुझे तो शादी नहीं करनी है। तो पहले तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये ब्रह्मा कुमारियां क्या है, लूटने वाली है, और अपने मित्रों से समझाने की कोशिश की कि इनका ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है। मैंने उनको कहा आप आके देखो, आपको संस्था में कुछ खराब देखने में आवे तो आप मुझे बताओ। मामा बाबा से मिले, जगदीश भाई ने प्रदर्शनी दिखाई तो कहे मैं भगवान भी आके मनाएंगा, मैं नहीं मानूंगा। तो बहुत पक्के वैष्णव थे मम्मा, मेरी माँ और बाप। फिर मुझे कहा ठीक है, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और तुम्हारे में कमाई की कैपेसिटी है, तुमको जो करना है करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम को मैं उस समय 63 में कहा मैं 20,000 दूंगा फ्लैट के लिए। पर हमने कहा एक फ्लैट में कैसे होगा बम्बई में, इसलिए दो फ्लैट लिए, 40,000 खर्च किए, सेंटर बनाया, डिस्पेंसरी का खर्च दिया पिता ने। और शुरू शुरू में जब विदेश गई 71 से, जब से विदेश वाले थोड़े ठीक हो गए तो वो लोग पैसा देने लगे हमारे टिकट का, तब तक लौकिक पिता ने दिया। और उसके बाद भी, उनके मृत्यु के बाद भी कुछ हमारे नाम पर था, वो बाद में हमको मिला। तो समझो बाबा ने खुश होके हमारी समझदारी देखकर मुरली में प्रशंसा की।
और किसी भाई बहन का यदि कोई प्रश्न हो तो आगे आके पूछ सकते हैं, जिस किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो। माइक रखा है आगे। दीदी जी, प्रश्न आया है कि अकेले योग से ही हमारे पुराने हिसाब किताब चुकतू हो सकते हैं या हमको कुछ ना कुछ कर्म भोग भी भोगना पड़ेगा? हिसाब किताब चुकतू करने के लिए अकेले योग से हो जाएंगे या कुछ कर्म भोग भी उसके साथ साथ हमको भोगना पड़ेगा?
भाई ये तो हर एक का हिसाब किताब है ना, आपका योग कितना है, हिसाब किताब कितना है। जितना हिसाब किताब है उससे ज्यादा योग होगा तो चुकतू होगा।
ओम शांति दीदी। दीदी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बाबा कहता है कि ड्रामा हो रिपीट होगा हर कल्प में, कुछ ऐसा पुरुषार्थ नहीं है कि जो हमने इस कल्प में या पिछले जन्म में गलतियां की हम इसका भुगतान कर रहे हैं, भी हम अगले जन्म में अगले कल्प में वो गलती करे ही ना शुरू से द्वापर से, ताकि हम संगम पर आकर जो पुराने अकाउंट को क्लियर करने के लिए हमें जो करना पड़ रहा है वो करना ना पड़े, हमारा आगे के लिए और जमा हो, ऐसा कुछ बताइए उस पुरुषार्थ के बारे में।
दीदी ये बोले हैं कि जैसे ड्रामा रिपीट हो रहा है, हमारे हर कर्म संस्कार सब कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जो इस कल्प में हमसे कोई गलती हो गई हो, कुछ इस तरह कर्म हो तो रिपीट ना हो?
ड्रामा हो रिपीट होना है, जो इस कल्प में गलती की है हर कल्प आप करते रहेंगे, आप सियाने नहीं बनेंगे ज्यादा।
और जिसको प्रश्न पूछना है जल्दी जल्दी आगे आ जाए, जल्दी से आए, आगे आके बैठ जाएंगे ताकि टाइम बच सके।
ओम शांति दीदी। प्रेत की रीति का कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं दो तीन वाक्य में? प्रेत की रीत बाबा जो बताते हैं सुस्पष्ट करेंगे तो अच्छा होगा।
दीदी जी प्रीत की रीत, प्रीत की रीत को स्पष्ट कीजिएगा।
देखो हम कहते हैं हमारा बाबा से प्यार है, प्यार तो है नंबर वन, प्रीत की रीत निभानी है, अर्थात जो बाबा की उम्मीद है हमारे में वो पूरी करनी है। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, पूरा बलिहारी जाना है, पूरा श्रीमंत पर चलना है। भाग समान बनना है, सिर्फ बाबा बाबा कहा ये काफी नहीं है, लेकिन भाग समान बनना है। तो इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना और देखना है कि हम मन मत परमत पर नहीं चलते, आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार होकर चलते हैं। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं और हमें बाबा जो कहता है जैसा कहता है ऐसा करना है।
एक प्रश्न है माता जी का कि जब हम भोजन बनाते हैं तो शुरुआत में तो बाबा की याद रहती है लेकिन बाद में वो भूल जाती है, तो ऐसा हम क्या पुरुषार्थ करें ताकि कंटिन्यूअसली भोजन बनाते समय बाबा की याद बनी रहे?
अटेंशन के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान मार्ग माना अटेंशन, 24 घंटा अटेंशन, तो कोई न कोई युक्ति रचनी है। कई माताएं किचन में म्यूजिक चलाते रहते हैं, कमेंट्री चलाते रहते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते रहते हैं, तो नेचुरली है सदैव तो याद नहीं रहेंगी पर ज्यादातर तो याद रख सकते हैं।
दीदी जी, एक प्रश्न है कि ध्यान और योग में क्या अंतर है? ध्यान और योग में क्या अंतर है?
बहुत अंतर है। ज्ञान है चार विषय का ज्ञान, आत्मा परमात्मा चक्कर वृक्ष कर्मों की गति का ज्ञान आदि आदि।
दीदी जी, ध्यान जी,
ध्यान और योग ज्यादा अंतर नहीं है। ध्यान भी बाबा की याद है, योग भी बाबा की याद है। वो ध्यान शब्द संस्कृत है और ध्यान में जरा ज्यादा कंसंट्रेशन रहती है, योग में भी कंसंट्रेशन तो चाहिए ही, परंतु भक्ति वाले भी कहते हैं हम ध्यान में बैठे हैं, वो भी ध्यान शब्द यूज करते हैं, तो समझो ध्यान हो सकता है बाबा को जानने बगैर ब्रह्म में ध्यान रखते हैं, या कोई देवी देवताओं में ध्यान धरते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, परंतु जब हम बाबा का योग कहते हैं, बाबा की पहचान से बाबा को याद करते हैं, तो पूरा फायदा उठाते हैं।
बाबा का ध्यान भी योग हो जाता है, बाबा का ध्यान ही योग हो जाता है। दीदी जी, प्रश्न है कि मम्मा का पाठ गुप्त क्यों है? ना मम्मा कोई स्तंभ है ना कोई कमरा है, तो मम्मा का पार्ट इतना गुप्त क्यों है? बाकी दादियों का तो है लेकिन मम्मा का कुछ भी नहीं है।
मम्मा की यादगार नहीं है ऐसे?
जी ना कोई यादगार है, उनका इतना पार्ट गुप्त क्यों है?
इसका इतना पार्ट,
मम्मा का इतना गुप्त पार्ट क्यों है?
गुप्त पार्ट क्यों है?
बोलते हमें सत्युग में लक्ष्मी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है?
सत्युग में लक्ष्मी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है?
वापिस समझाना उसे।
मैं रोज उसको समझाती हूँ तो रोज मुझे पूछती रहती है कि लक्ष्मी मुझे बनना है तो क्या करना है।
थोड़ी बड़ी हो जा।
वो मम्मा का गुप्त पार्ट के विषय में थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए कि मम्मा का इतना गुप्त पार्ट क्यों है?
मम्मा गुप्त रही और उस समय ब्रह्मा बाबा थे, तो ब्रह्मा बाबा को ये नहीं था कि व्यक्तियों का विशेष लोग याद करें और उनको रूप का कुछ करे। खुद के लिए भी तो फोटो नहीं निकालता था और खुद के लिए भी कुछ करने नहीं दिया, पर मम्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद हमारे जो भी भाई बहन थे उन्होंने थोड़ा भक्ति का यादगार का स्मारक बनाया। सिर्फ दादी ने मम्मा की याद के लिए पुणे में जगदम्बा भवन बनाया। हम लोग चाहते थे, क्योंकि मैंने भी मम्मा से सबसे पहले ज्ञान लिया था, तो हम लोग भी चाहते थे कि ज्ञान सरोवर में हम मम्मा का स्मारक बनावे, परंतु कुछ स्थान नहीं मिला, कुछ परमिशन नहीं मिली, तो इसलिए कुछ बना नहीं सके। लेकिन ब्राह्मणियों ने खूब फोर्स करके अपनी दादियों का स्मारक बनाया।
दीदी जी एक प्रश्न है कि हमारे लौकिक परिवार के हमारे साथी साथ में चलते हैं ज्ञान में, लेकिन ज्ञान में चलने के बाद भी उनसे कोई भी कर्म होता है तो उनके प्रति हमारा क्या फर्ज बनता है?
आपका फर्ज पूरा हुआ, आपने उनको ज्ञान में लाया, फर्ज पूरा हुआ। अभी वो अपने ज्ञान को जीवन में यूज करे न करे उसका काम है।
अगला प्रश्न है, जब हम अपने रूटीन में आते हैं तो आसपास की परिस्थिति, व्यक्ति, इन सबसे प्रभावित हो जाते हैं, तो उस प्रभावित में हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, तो उससे बचने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? बाहर के वातावरण, परिस्थिति, व्यक्ति, इनके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, तो ऐसे में इस प्रभाव से हम अपने आप को दूर रखने के लिए क्या पुरुषार्थ करें?
देखो बाबा ने पहले से ही बता दिया, दिन प्रतिदिन परिस्थितियां खराब होती जाएंगी, इसलिए हमको क्या करना है? अपनी स्थिति ऐसी मजबूत बनानी है कि परिस्थितियों के ऊपर हम विजय पाए, हमारे ऊपर परिस्थितियां विजय नहीं पाए। ये कमजोरी है जो हम परिस्थितियों के वश होके ऊपर नीचे होते हैं। तो आज भी बाबा ने कहा ना, अंगद बनना है, हलचल में नहीं आना है, अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है। तो इसलिए हमें याद द्वारा अपनी स्थिति ऐसी ऊंची बनानी है।
दीदी एक प्रश्न है कि योग में अतिंद्रिय सुख की अनुभूति के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए?
कौन सी अनुभूति?
अतिंद्रिय सुख की अनुभूति।
जितना हम बाबा की याद में लीन हो जाएंगे और कोई इंद्रियों के सुख की कामना ना रहे, क्योंकि जो इंद्रियों के सुख की कामना रहते हैं अतीन्द्रिय सुख नहीं अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ये देखना है कि हमें कोई कामना ना हो, बस मैं बाबा। तो बाबा की याद में लवलीन रहना है।
दीदी लास्ट प्रश्न है तो वही उससे संबंधित है कि ड्रामा रिपीट होता है, विकर्म होता है, तो क्या ज्ञान योग से हमारे विकर्म विनाश हो सकते हैं? ड्रामा रिपीट हो रहा है तो उसमें उनके विकर्म भी रिपीट हुए, तो क्या ज्ञान योग से विनाश हो सकते हैं?
जरूर, जितनी हम ज्वाला रूप योग में बीज रूप स्थिति में सिद्ध होंगे हमारे विकर्म विनाश होंगे।
दीदी जी ने इतना अच्छी तरह से आज के टॉपिक को भी क्लियर किया और अपने अनुभव से भी हम सबको लाभान्वित किया, हमारे प्रश्नों का भी उत्तर दे करके, हमारी समस्याओं का समाधान करके हमें संतुष्ट किया। तो हम दीदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठ।